अवधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखांवितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 17 द्विति ऋतुपर्णो नल सखो यो अश्वविद्या मया नला दत्वाक्ष हृदयं चास्मै सर्वकामस्तु तत्सुतम् ऋतुपर्णो नलसखो यो अश्वविद्या मया नला दत्वाक्ष हृदयं चास्मै सर्वकामस्तु तत्सुतम्।
बोलिए
माताएं ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण नामक पुत्र नल सख, नल का मित्र, यह जो अश्वविद्या, घोड़ों को वश में करने वाली विद्या, अया अर्जित की, नला नल से, दत्वा बदले में देकर, अक्षरिदयम धृत क्रीड़ा का रहस्य, च तथा अस्मै नल को सर्वकाम, सर्वकाम नामक तू निसंदेह तत्सुतम उसका पुत्र। अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। भगीरथ का पुत्र श्रुत था और श्रुत का पुत्र नाभ। यह नाभ पूर्व वर्णित नाभ से भिन्न है। नाभ का पुत्र सिंधु द्वीप हुआ और उसका पुत्र अयुतायु, अयुतायु का पुत्र ऋतुपूर्ण, जो नल राजा का मित्र था। ऋतुपूर्ण ने नल राजा को धृत क्रीड़ा सिखलाई और बदले में नल राजा से घोड़ों को वश में करना और उनकी देखरेख करना सीखा। ऋतुपूर्ण का पुत्र सर्व काम था। तात्पर्य, जुआ खेलना अर्थात धृत क्रीड़ा भी एक कला है। क्षत्रियों को धृत क्रीड़ा की कला में अपनी प्रतिभा दिखलाने की छूट थी। कृष्ण की कृपा से पांडवों ने जुआ में सर्वस्व गंवा दिया, कृपा से सर्वस्व गंवा दिया, अद्भुत कृपा है भाई। और अपने राज्य, स्त्री, परिवार और घर से सबसे वंचित हो गए, क्योंकि वे धृत क्रीड़ा में, कला में पटु नहीं थे। दूसरे शब्दों में हो सकता है कि भक्त भौतिकवादी कार्यकलापों में दक्ष न हो। अतएव शास्त्रों का उपदेश है कि जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए, संसारी कार्यकलाप अनुकूल नहीं होते। अतएव भक्त को भगवान द्वारा भेजे गए प्रसाद को खाकर ही संतुष्ट होना चाहिए। शुद्ध भक्त, भक्त शुद्ध रहा आता है, भक्त शुद्ध रहा आता है क्योंकि वह धृत क्रीड़ा, नशा, मांसाहार तथा अवैध यौन जैसे पाप पूर्ण कृत्य नहीं करता। और इसके आगे का श्लोक जिसका तात्पर्य नहीं है उसको हम पढ़ लेते हैं। आप सुनिए अनुवाद। सन्निवेश्य मनो यस्मिन् श्रद्धया मुनयो मला त्रैगुण्य दुस्त्यजम् हित्वा सद्यो यातास्तदात्मताम्। मुनिगण कामवासनाओं से सर्वथा मुक्त होकर अपना ध्यान भगवान की सेवा में लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति बिना किसी कठिनाई से भवबंधन से छूट जाते हैं और भगवान का आध्यात्मिक गुण प्राप्त करके दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। भगवान की यही महिमा है। हरे कृष्ण। तो आप सभी वैष्णवों का हृदय से धन्यवाद। बड़े भाग्यशाली है हम सभी कि श्रीमद् भागवत की ये दिव्य कथाएं जो हमारे मन, बुद्धि, हृदय एवं स्वयं आत्मा को परम पवित्र करती है, उसको श्रवण कीर्तन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। नवम स्कंद ईशानो कथा, जिसमें जो भगवान के हो गए हैं ऐसे पवित्र सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का इतिहास है और उसमें सूर्य वंश के राजाओं का चरित्र सुखदेव जी सुना रहे हैं, विशेष रूप में आठवां और नौवां अध्याय जो अब चल रहा है उसमें गंगा अवतरण की कथा है। और गंगा जी का त्रिलोक में क्या महत्व है, महात्म्य है, उनको सुख जी सुना रहे हैं। भुवन पाविनी भागीरथी सुरसरी श्री गंगा जी के तट पर ही सुखदेव जी उसी गंगा का महात्म्य सुना रहे हैं। और महाभागवत श्री महाराज परीक्षित जिन्होंने पहले से ही गंगा आश्रय करके रखा है, श्राप को सुनकर सीधे गंगा तट पर आए। और हम वैष्णव को वह श्लोक स्मरण रखना चाहिए जो महाराज परीक्षित ने 1.19.15 पहले स्कंद के 19वें अध्याय के 15वें श्लोक में उन्होंने स्वयं कहा है उन ऋषि मुनि ब्राह्मणों को जो सुखदेव जी के पूर्व वहां पर आ चुके थे। उनको महाराज परीक्षित कहते हैं, तम मोपयांतम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृत चित्त मीशे द्विजोपसृष्टम कुहक तक्षको वा दशत्वलम गायतु विष्णु गाथा। हे विप्रा ब्राह्मणों, गंगा च देवी, हम गंगा देवी के पावन तट पर विराजे हुए हैं, अब हमको कोई डर नहीं है। परीक्षित जी कहते हैं कि द्विजोपसृष्ट मुझ द्विज के द्वारा भेजा गया तक्षको वा अन्यथा और कोई भी सर्प आए चाहे काटे मारे हमको कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है आपको? बोले गंगा च देवी, गंगा के तट पर है ना, जिस जल का संबंध भगवान विष्णु के सीधे चरणों से है, उस चरणाश्रित पवित्र जल का आश्रय लेने के कारण हमको किसी तक्षक का भय नहीं। महाराज परीक्षित भी गंगा के महत्व को समझते हैं, इस श्लोक से इनकी निष्ठा पता चलती है। देखिए वैष्णवों को विचार करना चाहिए, ये जो गंगा जी है ना वो साक्षात विष्णु के चरण कमलों का चरणामृत है। दूसरा चरणामृत पुजारी हो न हो, शंका हो सकती है चाहे विग्रह हो न हो, लेकिन ये तो साक्षात चरणामृत है। और चैतन्य चरितामृत में भी बड़ा प्रसिद्ध प्यार है वैष्णवों को स्मरण कराने योग्य, दारू जल रूपे कृष्णेन प्रकट संप्रति, जय श्री राधा गिरिधारी जी की। विश्व में, पृथ्वी पर, विशेषकर कलयुग में कृष्ण साक्षात दो रूप में विराजमान है, एक दारू के रूप में और एक जल के रूप में। दारू जल रूपे कृष्णेर प्रकट संप्रति दर्शनेर स्नानेन जीवेन कर मुक्ति। जीवों को मुक्ति देने के लिए, जन्म मृत्यु से, इस चक्र से छुड़ाने के लिए कृष्ण दो रूप में प्रकट पृथ्वी पर विराजमान है, एक दारू के रूप में और एक जल के रूप में। तो भाई बताओ कौन सा जल और कौन सा दारू की बात कर रहे हो? दारू ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तमे, दारू ब्रह्म के रूप में तो साक्षात पुरुषोत्तम क्षेत्र में चाका डोला कालिया जगन्नाथ जी विराजते हैं, साक्षात श्री पुरुषोत्तम में विराज रहे हैं। दारू के रूप में भागीरथी है न जड़ ब्रह्म सम, और भूतल पर पृथ्वी पर वही भगवान भागीरथी के रूप में जल के रूप में विराजमान है। सुप्रीम रियलिटी इन लिक्विड फॉर्म, ये जो साक्षात ब्रह्म है वो मानो एक जल के रूप में द्रवित होकर बहते हैं पृथ्वी पर, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसको ब्रह्म जल कहा है, दिव्य जल, ट्रांसेंडेंटल वॉटर इतना जो भी कहे आप। तो बड़ी महिमा है, सुखदेव जी गंगा जी पृथ्वी पर आई उसके पीछे कारण जो इन सूर्य वंश के सगर महाराज के पुत्र पौत्रों का जो तपस्या भक्ति और बल था उसको सुना रहे हैं। और सगर के 60,000 पुत्र जो महाराज भगवान कपिल के अपराध उनको दुर्वचन कहने से जल गए, उसकी मुक्ति हेतु अंशुमान और तत्पश्चात दिलीप और उसके बाद भगीरथ जो तपस्या करके लाए, बड़ा प्रसिद्ध और पवित्र प्रसंग है गंगा अवतरण, गंगा महात्म्य। सुख जी ने इसके 2 श्लोक पूर्व ही सुनाया है, 3 श्लोक पूर्व ही, कि गंगा जी इतनी प्रसिद्ध पवित्र साक्षात चरणामृत है, जिनको वैष्णवानाम यथा शंभु भगवान शिव आनंद से और बड़ी प्रसन्नता से बड़ी बड़े आदर पूर्वक अपने शिर पर धारण करते हैं। सर्व लोक हित शिव है, जो समस्त जन समाज का महामंगल कल्याण करने वाले साक्षात स्वरूप श्री शिव है। दधार अबहत गंगा पाद पुतम जलम हरे, भगवान श्री हरि के चरणों से बहता ये पवित्र जल जिसको लोक गंगा के नाम से जानते हैं, उसको दधार अपने सिर पर जो सभी जीवों का मंगल करने वाले शिव दधार धारण करते हैं। 2 श्लोक इस संबंध में हमें और स्मरण करना चाहिए जो भागवत में है, भागवत 3:28-22 कपिल देव उपाख्यान देवहूति को सुनाते हैं। 3रा स्कंद 28वां अध्याय 22 नंबर का श्लोक, यत् सोचनि श्रित सरित प्रवरोदकेन तीर्थन्य मूर्ध्यनि कृते न शिव शिवो भूत ध्यातु मन समलशेलन सृष्ट जुष्टम ध्यायेत् चिरं भगवत् चरणारविन्दम्। भगवान कपिल कहते हैं कि जिन भगवान के श्री चरणों का चिंतन स्मरण बड़े बड़े योगी ऋषि मुनिंद्र युगों से करते हैं, उस चरण कमलों की झांकी की बात छोड़ दीजिए, उस चरणों से निकलने वाले दिव्य प्रकाश की बात छोड़िए, उस चरणों के नाखून से जो ज्योति निकलती है ना, उनका दर्शन भी नहीं पाते हैं, लेकिन केवल स्मरण करते हैं। स्मरणे न ध्यातु मन समल शैल निसृष्ट वज्रम, बड़े बड़े पाप के पहाड़ स्वरूप जो ये पाप राशि है, उस भगवत चरणारविंद का ध्यातु ध्यान करने पर वो चरण कमल का स्मरण वज्र का काम करता है, जैसे पर्वत को काटने के लिए इंद्र ने वज्र चलाया था और सारे पर्वतों को चूर्ण चूर्ण कर दी, उनकी पांखें काट दी थी, ऐसी कथा शास्त्रों में पुराणों में है। तो भगवान श्री कृष्ण के स्मरण का चिंतन का उपमा वज्र से किया जा रहा है। पाप के पहाड़ को भगवत चरण स्मरण काट देता है और उसी चरणों से बहता सरित माने जल जो प्रवरोध के न सभी जलों में श्रेष्ठ है, जो महातीर्थ माना जाता है, मूर्धनि कृते न अपने सिर पर धारण करके शिव शिवोभूत, शिवजी हो गए। ऐसे वृंदावन में और गंगा तट पर हरिद्वार में कुछ महात्मा लोग कहते हैं कि ये नंगा ने गंगा धारण किया, नहीं तो इनको कौन दिखता पूजता। तो शिवजी ऐसे दिगंबर रहते हैं, लेकिन गंगा धारण करने पर पूरे विश्व में पूज्य हो गए, नहीं तो इनको कौन पूजता है, तो गंगा के कारण पूजे जा रहे हैं, ऐसे विनोद में कहते हैं, लेकिन वास्तविकता है शिव शिवोभूत। कपिल भगवान कह रहे भागवत 3:28-22 कि शिवजी शिव शिवोभूत, महामंगलकारी महाजगत के लिए हो गए, क्योंकि तीर्थेन मूर्ध्नि कृतेन भगवान के चरणों से बहता श्री गंगा मूर्ध्नि कृतेन अपने सिर पर धारण किया उन्होंने। भगीरथ ने निवेदन किया कि गंगा को धारण करेंगे, हमारे पूर्वजों का उद्धार करना है, माँ गंगा कहती है कि भूतलम भित्वा, हम ये पृथ्वी में वो सामर्थ्य नहीं है कि हमारे वेग को वो धारण कर सके, पाताल में चली जाएगी, तो आप कृपा करेंगे कि सिर पर, क्योंकि आपका सिर ये कर सकता है। तो शिव जी ने कहा कि आप तो हमारा, सब असुर हमारी तपस्या करते हैं, हमारे चरणों में आते हैं अपने स्वार्थवश, लेकिन भगीरथ तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरा मंगल करने के लिए आए हो, ये तो मैं भी चाहता हूं। तुम प्रार्थना न करो, तपस्या न करो तो भी मैं कर, मुझे तो सामने से ये करना था। जिस चरणों का मैं ध्यान करता हूं कैलाश में, चिंतन करता हूं, कथा करता हूं, वही चरणों का साक्षात जल सिर पर धारण करने का अवसर कौन चुकेगा? चलो चलो जल्दी, कहां जाना है धारण का? भगवान शिव सिर से इसी बात को बलि महाराज भी याद करते हैं। भागवत 8:18-28 भागवत में, तत्पाद सोचम जन कल्म शापहम सधर्व विन्मूर्ध्य निसाक्ष। सीधा कहते हैं भगवान सुखदेव बलि महाराज के आंगन में उस यज्ञ में, जब वामन गए विष्णु वामन बनकर और उनके चरण कमलों को धोकर अपने सिर पर डाला, सभी अपनी पत्नी पर, पूरे महल पर छिटकाव करते हुए बलि महाराज के भावों को सुखदेव जी अपने शब्दों में कहते हैं कि यद पाद सोचम, जिनके चरणों से धोया सोचन धोया हुआ, जन कल्म शाप हम, समस्त जन समूह के कलमश यानी पाप मल को अपहत नष्ट करने वाले साक्षात भगवान शिव, यद देव देवो गिरीश चंद्र मौली दधार मूर्धना परया च भक्त्या। परम भक्ति भाव से अपने सिर पर सदेव देवो, देवों के देव गिरीश हिमालय पर विराजने वाले हैं, चंद्रमौली जिनकी जटा पर चंद्र विराजमान है द्वितीया का, जो समुद्र से निकला था, वे भगवान देव देवो गिरीश चंद्रमौली इस गंगा के जल को, भगवान के चरण धोवन को दधार मूर्धना अपने सिर पर धारण करते हैं। बोले कैसे करते हैं? कोई कराता है या जैसे हम लोग बाय फोर्स जब करते हैं मंगला, ऐसे ऐसे बाय फोर्स हो रहा है गुजराती में कैसे पराणे पराणे? बोले नहीं, प्रेम से दधार भक्तिया परया भक्तिया, परम भक्ति भाव से अपने को महासौभाग्यवान समझते हुए उस गंगा जल को अपने सिर पर भगवान शिव धारण करते हैं। तो इससे ही पता चलता है ना कि गंगा की क्या महत्व है। भागवत ये नवम स्कंद के 12-15 चार अध्याय जिसमें गंगा जी प्रकट हो गई, सगर के पुत्रों को भेज दिया मुक्ति में। स्वर्ग से तात्पर्य उद्वलोकम गच्छति, उद्वलोक को गए। और किस 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 सगर के पुत्र? जिसने ब्रह्म अपराध किया था उसी भगवत अपराध, ब्रह्मणी अपराध है ना, ब्रह्म दग्ध हत एव, उस ब्रह्म के, ऐसे भी भगवान कपिल ब्रह्म है साक्षात और उसमें भी ब्राह्मण है, कर्दम के पुत्र है, तो भगवत अपराध भी होगा और भक्त अपराध भी होगा। और ऐसी शास्त्रों में कथाएं है वैष्णवों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण को किए हुए अवहेलना पूर्वक वाक्य, उसका कोई निराकरण नहीं है। हम भागवत में एक प्रसंग है तृतीय स्कंद में, जब दीति ने संध्या समय संभोग की कामना करके कश्यप जी से, और वो दुष्ट पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दुष्ट गर्भ, हम वहां लिखा है मैत्रेय जी ने, शुक जी ऋषिकेश में विदुर को मैत्रेय जी ये प्रसंग सुनाते हैं मूल रूप में, तो कहते हैं कि कश्यप भगवान ने कहा कि दीति तुम्हारे इस दुष्कर्म से तुम्हें गर्भ तो होंगे लेकिन महाअसुर दुष्ट जो सबको सताएंगे, देवताओं को परेशान करेंगे, ऋषि मुनि को 3-4 श्लोकों में उनके गुण कर्म भविष्य बता दिया कश्यप जी ने। तब दीति रोने लगी और कहने लगी कि हाय रे हाय, मेरे गर्भ से ऐसे पुत्र होंगे जो सबको परेशान करेंगे। भगवान कश्यप ने कहा हां, लेकिन एक सौभाग्य है। क्या सौभाग्य है? भगवान विष्णु की भुजाओं से, उनके अस्त्र और शस्त्रों से ही मारे जाएंगे दोनों तुम्हारे ये पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। किससे मारे जाएंगे? भगवान विष्णु की भुजाओं के अस्त्र और शस्त्रों से। तब भागवत 3:14-41 दीति उवाच, दीति कहती है कि वाह, आपने अंत में बड़ी सुंदर बात बताई, क्या क्या सुंदर बात बताई, बोले वधम भगवता साक्षात सना भोर बाहुना। हे भगवान, आपने क्या बताया, मेरे पुत्रों का वध भगवान विष्णु की भुजाओं के अस्त्रों से होगा। बोले हाँ। अरे भगवान के हाथों जब हमारे पुत्र मरेंगे तब तो मुक्त ही हो जाएंगे। भगवान को भगवान से हाथ से मरेंगे मतलब भगवान को देखेंगे, भगवान की भुजाओं को देखेंगे, भगवान के शस्त्र अस्त्र को देखेंगे, भगवान के दर्शन से ही। यद दर्शनो पुनर्भवन स्यात्। कुंती कहती है कि जिनके दर्शन करने से पुनर्भव का दर्शन नहीं होता, तो आप इनके दर्शन करने से तो हमारे पुत्र मुक्त ही हो जाएंगे। तो अब कोई चिंता नहीं है, दीति मन में भगवान कश्यप से कह रही। लेकिन उसके बाद एक बड़ी सुंदर बात बताती है कि हमारे पुत्रों के विषय में अब हमको चिंता नहीं है क्योंकि विष्णु के हाथों से मारे जाएंगे। लेकिन हे भगवान कश्यप, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मेरे ये पुत्र न ब्रह्म दग्धस्य हत न भूत भयदस्य च। किसी ब्राह्मण के क्रोध से मेरे पुत्र नहीं मरने चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के क्रोध से अगर किसी की मृत्यु होती है तो नरक में भी उसको स्थान नहीं मिलता, और वो जिस जिस योनि में जाता है वहां सब उसे तिरस्कार करते हैं, निंदा करते हैं, और वो दुर्गति से कभी ऊपर उठ ही नहीं सकता। तो मां कृदात ब्राह्मणात प्रभु, हे प्रभु कश्यप, आप इतना आशीर्वाद दीजिए कि माम पुत्र यो, मेरे ये जो दो पुत्र है वो किसी ब्राह्मण के क्रोध से नहीं मरने चाहिए। भगवान के हाथों मरेंगे चलेगा। ये प्रसंग कैमुत्य न्याय से यह बता रहा है कि कैसे हो मृत्यु हो जाए चलेगा, लेकिन किसी वैष्णव ब्राह्मण के क्रोध से मरना नहीं है। नहीं तो सीधा लिखा है नारकानुगृहणंती या योनिम गतो अस। नरक में भी अगर वो जीव जाएगा ना तो नरक के लोग यमदूत तो मारते पीटते हैं, दूसरे जीव भी उसको छूते बोले ये आएगा तो हमको 50 साल और नरक में रहना पड़ेगा इसके संग। और उसकी टीका में लिखा गया है विश्वनाथ श्रीपाद विश्वनाथ ठाकुर ने, स्व गर्भ, ऐसे कुत्ते को स्व संस्कृत में कहते हैं ना स्वपच, स्व माने पच माने पचाने वाला चंदाल, ब्राह्मणी गवि हस्ती ने में आप सुने होंगे गीता। तो गदर्भ माने गदा, ये प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में 3.14.42 में लिखते हैं कि ये ब्राह्मण के क्रोध से जो मरता है वो सब जीवों के द्वारा, नरकीय जीवों के द्वारा भी तिरस्कृत जीव है। और इस संसार में हम देखते हैं सबसे तिरस्कृत है कुत्ता, प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि कुत्ता को सब तिरस्कार ही करता है, उसको मार देने के बाद भी तिरस्कार, ऐसा नहीं कि पधारिए ऐसा तो कोई नहीं कहते आसन लीजिए आसनम गृहणाम जलम, ऐसे तो कोई देता नहीं उनको, देने के बाद भी डांटना मारना ही तिरस्कृत है। और कुत्ता को मनुष्य तिरस्कृत करे ऐसा नहीं, कुत्ते को कुत्ते भी तिरस्कार करते हैं। उसकी गली में चला जाए तो उसको स्वागत नहीं होता दूसरे, आप देखे होंगे सोसाइटियों में। तो कुत्ता अपने समाज में भी तिरस्कृत रहता है और यद अधिष्कृत वास्तविक जनरल जेंटलमैन सोसाइटी के द्वारा भी। लेकिन आज तो सब डॉग कॉन्शियसनेस हो गए हैं, तो हम जहां रहते हमारे सामने की बिल्डिंग में एक व्यक्ति जो 1100 स्क्वायर फीट का उसको फ्लैट है, बड़ा हॉल है, उसमें वो व्यक्ति रहता है और दो कुत्ते रहते हैं बस, बढ़िया से। तो हम देखते हैं सामने से तो कुत्ता सेवा होता रहता है बढ़िया से। तो आजकल तो कुत्ते भी मर्सिडीज में घूमते हैं, वो बात अलग है, कुछ पुण्य भाग्य किए होंगे। लेकिन शास्त्र कहता है कि वो अपने समाज में भी निंदनीय है, तिरस्कृत है। वो जीव जिस ब्राह्मण के अपराध से जो मरा है वो जनरक में भी जाए, चाहे कुत्ते योनि में जाए, यो याम योनिम गत, जिस योनि में वो जाए वो बस दुखी होगा, तिरस्कृत होगा और उसका उद्धार हो ही नहीं सकता। ऐसा ये द्वितीय वाला प्रसंग आप पढ़िएगा जो मैं एड्रेस दे रहा हूं इसका, कि भाई 3.14.42 जो द्वितीय कह रही है कि मेरे पुत्र ब्राह्मण के क्रोध से नहीं मरने चाहिए क्योंकि उनका उद्धार होता ही नहीं। अब ये सगर के 60,000 कैसे मरे थे, उसी कपिल देव के ब्राह्मण क्रोध अपराध करने पर ना, मतलब इनका उद्धार असंभव एव, तस्य उद्धारम गंगा अपि एकमात्र करतार। हमारे आचार्य जी लिखते हैं कि ऐसे जीवों का उद्धार केवल एक ही है जो कर सकती है, और वो है भागीरथी श्री गंगा, जिनका स्वरूप स्वभाव है कि उनका स्पर्श मात्रेण पापात निवारयति, उनका स्पर्श कोई कर ले वो पाप से मुक्त हो जाएगा। दूसरे किसी साधन में वो सामर्थ्य नहीं है इस ब्रह्म दंड से छुड़ाने की, लेकिन ये प्रसंग हमारे सामने है भागवत का कि ये सगर के 60,000 जल गए थे महद अपराध के कारण। बड़ी बात, डेंजर बात है। हम पिछले श्लोक कक्षा में सुनाए थे कि रहुगण भी इसी से डरे हुए कहते हैं जड़ भरत से कि ना हम इंद्र के वज्र से डरते हैं ना शिव जी के त्रिशूल से, हम डरते हैं ब्रह्म कुलाव मानाद किसी ब्राह्मण के अपराध से, ये स्वीकार करते हैं रहुगण, और किसी शस्त्र का हमको डर नहीं है। ये बड़ा खतरनाक बात है, लेकिन ऐसे महत खतरनाक से भी गंगा जी ने तार दिया, प्रत्यक्ष तार दिया। इसीलिए सुखदेव जी 12 से 15 चार श्लोकों में गंगा अवतरण की कथा के बाद गंगा का महात्म्य सुनाते हैं कि जस्य न देहस्य स्पर्श, इन सगर के 60,000 पुत्रों के शरीर से गंगा का स्पर्श नहीं हुआ, किससे हुआ, उस शरीर की राख से, और राख से भी इमीडिएट तुरंत नहीं हुआ, कई हजार वर्षों के बाद हुआ। समझ रहे हैं आप, उस गंगा जल में डायरेक्ट थोड़ी स्नान किए शरीर से ये लोग, उनके शरीर से अग्नि से जो राख बन गई उस राख का गंगा से स्पर्श हुआ, डायरेक्ट शरीर से नहीं हुआ है ना, शरीर की राख से हुआ, और वो भी तुरंत नहीं हुआ। ये कितने राजा ये लोग तपस्या किए कई हजार, उसके बाद हुआ। तस्या देहस्य भस्म संगेन, उसकी देह की भस्म के संग से स्वर्ग सगर पुत्रा स्वर्ग याता, इस सगर के पुत्र उद्वलोक को चले गए। तो किम पुनः श्रद्धया, तो फिर जो श्रद्धा से प्रेम से उस गंगा के जल में आदर से स्नान करते हैं, स्पर्श करते हैं, अचमन करते हैं, उनका क्या कहना हा? उनका क्या कहना। परीक्षित जी को सुखदेव जी सुना रहे हैं कि उस भक्त के विषय में, हाँ उस जीव के विषय में क्या कहना जो गंगा को प्रेम आदर से मानते पूजते स्नान करते, उनकी मुक्ति के विषय में कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए महान आचार्य श्रीधर स्वामी की टीका का अनुवाद करने वाले बंसीधर जी लिखते हैं एक बड़ा विश्वविख्यात श्लोक जो वैष्णव जगत में प्रसिद्ध है, आप शायद पहले किसी से सुने हो तो, एक वैष्णव कवि की उक्ति है गंगा के विषय में, गंगा के भक्त ने बोला है ये श्लोक। वो कहते हैं कि इदम हि गंगम, ये जो गंगा का जल है ना, त्यजतामिहांगम, इस गंगा के जल में इह अंगम त्यजताम, कोई शरीर छोड़ता है गंगा के जल में शरीर, इदम हि गंगम त्यजता इह अंगम पुनः न च अंगम, फिर उसे शरीर नहीं मिलता। देखिए संस्कृत भाषा है, सुनने में बड़ा आनंद देती है। इदम ही गंगम त्यजताम इहा अंगम पुनः न च अंगम, फिर ये अंग नहीं मिलेगा। अगर इस अंग को इस गंगा में, फिर प्रश्न किया जाए कि भाई कदाचित कुछ ना कुछ गड़बड़ भूल कुछ भी कहिए देवताओं की उनकी, कहीं शरीर मिल गया तो आप गारंटी देते हैं? बोले चलो शरीर तो नहीं मिलेगा, अगर मिल गया पुनः च अपि अंगम, अगर मान लीजिए कि पुनः शरीर मिला तो कैसा मिलेगा मालूम है, अभी जो है ऐसा नहीं। तो बोले कैसा मिलेगा, पुनः च अपि अंगम, अगर पुनः उसे अंग मिला देह शरीरम मिला तो कैसा मिलेगा, करे रथांगम, उसके कर पे रथ का अंग होगा, शयने भुजंगम, शयन मतलब सोने की सैया, भुजंग की होगी मतलब शेष नाग की, तो भुजंग कहते हैं। याने विहंगम, और उसकी सवारी किस पर होगी, विहंग माने पक्षी गरुड़ा, चरणेम्बु गंगम, और उनके चरणों से बहता हुआ जल भी गंगा हो जाएगा, ऐसा शरीर मिलेगा। मतलब विष्णु देहम प्राप्यसी, गंगे या गंगा के अंदर जो मरता है सो चतुर्भुज हो जाता है, कहने का तात्पर्य है। क्योंकि सायुज्य मुक्ति को पार्थ कहता है स्मरण बात्रेण गंगायाम, मुक्ति भागी भवेन नर नारदीय पुराण। कई वेद पुराणों में ये सारी बातें स्पष्ट लिखी गई है। तो एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि हे माँ गंगा, तुमने जितने को तारे है उतने न नभ में तारे है। तुमने जितनों को तारा है ना, उतने तो आकाश में तारे भी नहीं है, इतने को तारा है और तार रही है, आज भी तार रही है, आज भी तार रही है। तो हे माँ गंगे, उतने तो इतने तुमने तारे है जितने न नभ में तारे है। बड़ी भाषा है इन कवियों की सुंदर। तो भगवान शिव दधार भक्त्या, इस गंगा जल को, इस विष्णु चरणामृत को अपने सिर पर धारण करके कृतार्थ मानते हैं, अपने को महासौभाग्यशाली मानते हैं, और नाम गंगाधर करके कोई बुलाता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान शिव। और उस गंगा जी की निर्मल धारा हम भारतवासियों का सौभाग्य है कि हिमालय गंगोत्री से लय बहती हुई गंगा सागर तक भारतवर्ष में पवित्र 2500 से अधिक किलोमीटर में बहती है ये, कई धामों को, और लाखों लोगों को भोजन दे रही, अन्न दे रही, पाप काट रही है। किसके कारण? इस सूर्य वंश के पवित्र राजर्षियों की तपस्या के कारण, जिसका इतिहास हम सुन रहे हैं यहां पर। अगर ये अंशुमान जी बैठ गए होते कि चलो गए तो गए, कुछ श्राद्ध कर दिया, नहीं होगा तो कोई नहीं, खाने पीने लगे तो आती गंगा जी, तो जीवों के लिए वो तो अपने पिताओं के पितरों के लिए लाया। उसके बाद गंगा जी अप्रकट या अदृश्य नहीं हो गई, सगर के पुत्रों को इस अंशुमान या जो भगीरथ या दिलीप का इतिहास यहां बताया जा रहा है, उनके पूर्वजों को तो उनकी तपस्याओं के कारण तारा, लेकिन आज जिस जिसके पूर्वजों की अस्थि उसमें बहाई जा रही, उन्होंने कौन तपस्या की? कुछ लोग तो उतनी भी तपस्या नहीं करते, हमने देखा है हमारे संबंधों में, कहते प्रभु जी आप गंगा जी जा रहे हो हरिद्वार, बोले हाँ, तो एक काम करो, ये हमारे उसके उसकी है, उसको उसमें डाल देना, बोलो उसको आने का उतना कष्ट नहीं करना है, ऐसे ही बाल कर देते हैं पास। हाँ, अच्छा है कुरियर नहीं कर देनी, तो ये भी करेगी अभी आगे चलकर कि भाई ये कुरियर में डाल दो, कोई ब्राह्मण वहां पर ऑफिस होगा और डाल देगा अपने पीछे, उतना टाइम नहीं है उसको, फिर भी गंगा जी उसका उद्धार करती, फिर भी करती है। तपस्या तो इन राजर्षियों की है ना, इसीलिए इन राजर्षियों का इतिहास बड़े भाव से, प्रेम से और बारम्बार सुनना पड़ेगा, क्योंकि गंगा तट पर सुखदेव जी सुना रहे हैं, जिनके नाम लेने से मन और आत्मा बुद्धि निर्मल हो जाता है। तो किम पुनः श्रद्धया, तो फिर जो श्रद्धा और प्रेम से उस गंगा में नाए या ध्यान करे, स्मरण करे, उनके विषय में क्या कहना। कविमुति न्याय से ये श्लोक भी महात्म्य में बताया जा रहा है। उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं गंगायाम, श्रीधर स्वामी इसको कहते हैं कि गंगा प्रसंगे न महत्वम, ये जो महात्मय है चतुर्भी, चार श्लोकों में 12, 13, 14, 15 चार श्लोकों में गंगा का अवतरण कथा के बाद महात्म्य बताया जा रहा है, और उसमें कहते हैं 15वें श्लोक में, जिसका तात्पर्य नहीं है इसलिए हमने बोर्ड पर नहीं लिखाया, सन्निवेश्य मनो यस्मिन श्रद्धया मुनयो मला। मुनयो बहुवचन, बहुत सारे मुनि लोग, कथम भूतम मुनयो, कैसे मुनि है, अमला, जिसके हृदय में कोई मल नहीं है। मल क्या है? अमला निर्मला अंतकरणयो जस्य स, जिसका हृदय अंतकरण निर्मल है। निर्मल से क्या तात्पर्य है? राग काम लोभादय विकार शून्यैव, जिसके हृदय में राग लोभ काम क्रोध ये सब दोष अभद्र नहीं है, उसको निर्मल कहते, शुद्ध कहते, उसी को संस्कृत में अमलात्मा, अमल, अमल मुनि कहते। अमला मुनयो श्रद्धया, श्रद्धा से, प्रेमणा भक्ति भाव से, आदर पूर्वक मनो, अपने मन में त्रैगुण्यम दुष्टजम हित्वा, इस त्रिगुणात्मक जगत सत्व रजस तमस में ये जगत, इस जगत की वस्तु, इस जगत के व्यक्ति, ये सब क्या है? त्रिगुणान, त्रिगुणात्मक है ना, यह हमारा देह क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु माया प्रकृति, इस जगत की सारी वस्तु ये किससे बनी है? त्रिगुणात्मक रजस्तमस में, सारे व्यक्ति वस्तु ये जगत क्या है? त्रिगुणात्मक है। और इसके कारण महामोहिनी भगवान की बहिरंगा शक्ति एक अज्ञान के कारण देहात्म बुद्धि करा के एक मोह प्रकट करती है सबकी चित्तवृत्ति में। जितने हूं जीव है जिनको प्रकृति के द्वारा ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर मिला है, उस सूक्ष्म देह में इस स्थूल शरीर के प्रति या इस बहिरंग प्रकृति के वस्तु के प्रति क्या प्रकट होता है? मोह, मेरापन, अहम मम। ये शरीर अहम अस्ति, ये मैं हूं, ये शरीर और ये कुछ जो है दो पांच वो मेरे हैं, अहम और मम, ये मोह, ये अज्ञान माया द्वारा प्रकट होता है गीता के अनुसार। और फिर ये माया मोहित बद्ध जीव, कितना हूं गुरु ज्ञान दे, कितना हूं शास्त्र पढ़े, यहां तक कि उद्र संन्यास अवस्था को प्राप्त करने पर भी भागवत में गोपी जनों ने उद्धव जी से 10:47 जहां पर उद्धव जी मैसेज देकर जाते हैं मथुरा से, उद्धव जी को कृष्ण भेजते हैं संदेश देने के लिए, तब उद्धव जी के प्रति उन गोपियों ने कहा है कि हाय रे तुम्हारा ये मित्र कैसा है। बोले इस संसार में मुनिनामपि, बड़े बड़े मुनि त्यागी बैरागी के लिए भी संसार के संबंधों की आसक्ति छोड़ना मुश्किल है, प्रगट बात है। कोई कितना हो ज्ञानी हो जाए लेकिन ये मेरे है ये छूटता, गीता का बड़ा वक्ता हो जाएगा, कितने उनके चेले भी हो जाएंगे लेकिन मेरा आश्रम या मेरा शरीर या ये मेरे ये जाता नहीं है, मोह। लेकिन मुनयो बड़े भगवान के चरणों में मन लगाकर जिनका मन बुद्धि भगवान को समर्पित हो गया तो ये दुष्ट जो संसार उसको शीघ्रम हित्वा अनायास छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं और याता तदात्मनाम और उस भगवान के स्वरूप को अर्थात सायुज्य मुक्ति को, भगवान जैसा ही स्वरूप वैकुंठ में या भगवत धाम, सायुज्य सारूप्य सालोक्य शास्त्री जो पांच मुक्ति है जिसको भक्त नहीं चाहते हैं कपिल देव कहते हैं, लेकिन योगी मुनि बैराग पूर्वक अपने मन में उस संसार के संबंधी की आसक्ति को छोड़कर मन में भगवान का चिंतन स्मरण करते हुए और उनके धाम को प्राप्त हो जाते हैं, उन चरणों से ये गंगा निकली है। मतलब गंगा जी का महात्म्य बताने के बाद एक श्लोक में भगवान के चरणों का महात्म्य बताया जा रहा है, अनंतस्य चरण महात्म्यम सूचक, उस भगवान अनंत के जिनकी लीला अनंत है, जिनका धाम अनंत है, जिनका स्वरूप अनंत है, हरि अनंत है, जिनके गुण अनंत है, उस भगवान विष्णु अनंत के चरणार विंद की ये महिमा है कि उन चरणों में केवल मन लगाने पर संसार त्रिगुणात्मक माया छूट जाती है, जो बड़े बड़े ध्यान ज्ञान योग से नहीं छूटती लेकिन भगवत चरण चिंतन स्मरण में वो शक्ति है कि ये दुस्त्यज माया उसे छोड़ देगी। और बड़े बड़े ऋषि मुनि त्याग कर भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए अर्थात भगवत धाम को अपने नित्य स्वरूप को प्राप्त हो गए इन चरणों का स्मरण और चिंतन करके, उन चरणों से परीक्षित ये गंगा निकली है। क्या उसमें इतना सामर्थ्य नहीं होगा? जरूर होगा। वस्तु शक्ति काम करती है ना, देखिए सामान्य अग्नि में आप लोहा डाल दो ना, 10-5 मिनट रहने पर वो लोहा भी अग्नि बन जाता है। तब ये तो भौतिक बात है, यहां सच्चिदानंद भगवान श्याम सुंदर विष्णु के चरणों से जिनका संबंध है वो सच्चिदानंद नहीं होगा क्या? गंगा के विषय में क्या कहना है, एन के न प्रकार न घुमा फिरा के गंगा महात्म्य को सुख जी प्रस्तुत कर रहे हैं। अब बहुत हो गया गंगा का महात्म्य, सुखदेव जी कहते हैं कि 15वें श्लोक तक 12, 13, 14, 15 इस तरह गंगा का महात्म्य बताया गया। तत्पश्चात सगर महाराज के संततिम वर्णनम आहु, और फिर आगे उस भगीरथ के कौन पुत्र हुए उसका वर्णन चालू करते हैं। अब गंगा अवतरण प्रसंग इस तरह महात्म्य बताकर भगवान के चरणों का और चरणामृत का दोनों का महात्म्य बताकर अब कहते हैं 16वें श्लोक में, श्रुतो भगीरथो यज्ञ, वो जो महान भगीरथ जो गंगा को लाए तपस्या करके, इसलिए उनका नाम भागीरथी पड़ा। वे भागीरथ के एक पुत्र हुए जिनका नाम था श्रुत। श्रुत, श्रुति में जो श्रुत है वो भागीरथ के पुत्र हुए श्रुत, और उस श्रुत के पुत्र हुए नाभ। और पहले एक नाभाग जो अम्बरीश नाभागस्त नहीं है, वो नाभ नहीं, इसलिए यहां पर कहते हैं कि नाभ अपरो भवत। उस भगीरथ के श्रुत हुए और श्रुत के नाभ हुए, लेकिन परीक्षित पहले जो नाभ था वो अलग। कई कई ऐसे राजा है जो दो तीन बार नाम रखते हैं, दिलीप भी जैसे है, आगे और एक दिलीप होंगे, अज के पिता, अज के दशरथ, दशरथ के राम, और उस अज के पिता दिलीप हुए, रघु के, तो इस तरह रघु महाराज के पिता दिलीप हुए, सॉरी दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, दशरथ के राम, आगे वर्णन आएगा दसवें अध्याय में, रामलीला चालू होगी तब। तो सूर्यवंश के राजाओं में नाभ हुए और नाभ का पुत्र हुआ सिंधु द्वीप। शुक जी को पूरा हिस्ट्री कंप्यूटराइज है, किसके क्या क्या हुए, किसका शादी किससे हुआ, भांजे कितने हुए, पुत्र कितने हुए, गादी कितने को मिली, कौन वैराग्यवान था, पूरा लंबा चरित्र उसको याद है। लेकिन जो जो लाइन में आते मुख्य रूप से उसका ही एक, जितना उसको याद है ना उनसे 1% भी नहीं बता रहे, इन सब इतना सुखदेव जी सुखदेव है भाई, इसीलिए उनको सर्वज्ञ कहा गया है भागवत, सब पता है कौन क्या चक्कर है सुखदेव जी को। सिंधु द्वीप तस्मात, सिंधु द्वीप के पुत्र हुए अयुतायु। 16वें श्लोक में, ये 17वां है, उसके पहले श्लोक की बात बताई, 15 तक तो महात्म्य हुआ, अब भक्तों को पता होना चाहिए जो बताया गया, अमलात्मा मुनि जिन चरणों का ध्यान करके दुष्ट माया को त्याग कर भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, ये है चरणों का महात्म्य। और उसके बाद कहते हैं कि मैं संतति तुमको गिना रहा था सूर्य वंश के राजाओं का, तो ये भगीरथ जो गंगा को लाए उसके पुत्र श्रुत हुए और उसके पुत्र नाभ हुए, उसके पुत्र सिंधु द्वीप हुए और सिंधु द्वीप के पुत्र हुए अयुतायु। एक श्लोक में चार राजा का नाम गिना दिया, कोई हिस्ट्री नहीं बताया कि श्रुत ने क्या किया, सिंधुद्वीप ने क्या किया, कुछ तो किया ही होगा ना, ये बड़े बड़े प्रतापी तेजस्वी राजा है। लेकिन सुखदेव जी को रामलीला की ओर जाना है सूर्य वंश इसलिए राजधानी अभी है स्पीड उसकी, किसी किसी का बीच में बताते जाएंगे। और उस अयुतायु के पुत्र हुए ऋतिपर्ण न लसखो, ऋतुपर्ण, बड़े प्राकृतिक नाम लगते हैं, ऋतु के अनुसार पर्ण आए, पर्ण माने पत्ते होते हैं वसंत में जैसे पेड़ों पे पर्ण लगते हैं, पर्ण माने पत्ता, पान, लिप जीप्स कहते हैं तो ऋतु पर्णो नल सखो, एक नल नाम के राजा हुए, इनके मित्र थे कौन, ये ऋतुपर्ण जो अयुतायु के पुत्र है, जो भगीरथ से पांचवी पीढ़ी में। अरे भाई, इसके ऋतुपूर्ण के पुत्र हुए, उनका इतिहास बताते बताते ये ऋतुपूर्ण का नल के साथ मित्रता थी, ये बताने का क्या प्रयोजन है? जैसे उसका तो नहीं बताया कि अयुतायु और सिंधुदेव किसके मित्र थे, अब ऋतुपूर्ण के विषय में बता रहे कि वो नल का सखा था, मित्र था। कुछ कारण है, क्योंकि ये ऋतुपर्ण के पास एक क्षत्रिय कला थी। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जुआ धृत क्रीड़ा भी एक कला है और क्षत्रियों को ये प्रस्तुत करने की, दिखलाने की छूट है। ये धृत क्रीड़ा है ना, जुआ खेलना, पांसे खेलना, ये एक कला भी है और साथ साथ में क्षत्रियों की एक शान भी है। और क्षत्रिय सूक्ष्म धर्म ये कहता है कि जैसे कोई युद्ध के लिए उनको ललकारे तो वो मना नहीं कर सकते, ऐसे इसके लिए भी कोई उसको निमंत्रण दे तो वो मना नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी पांडवों को याद कर रहे हैं कि पांडवों ने भी ये धृत क्रीड़ा में भाग लिया था कृष्ण की कृपा से, लिख रहे हैं कि कृष्ण चाहते थे, नहीं तो महाराज युधिष्ठिर जैसा धर्मराज राजा, लेकिन उसमें वो दक्ष नहीं थे जितना वो था गांधार नरेश, दुर्योधन का मामा, नाम नहीं लेना है उनका, ये राजाओं का नाम ले रहे उनका नाम क्यों ले बड़े बड़े प्रत, तो वो इसमें दक्ष था, ये इसमें दक्ष नहीं थे, इसलिए संपत्ति, स्त्री, धन, राज्य सब कुछ हार गए ये लोग। मतलब वो निमंत्रण दिया था इसलिए गए थे क्षत्रिय कला शान, लेकिन उसमें वो दक्ष नहीं थे। लेकिन प्रभुपाद जी एक पॉइंट बड़ा सुंदर लिखते हैं अपने तात्पर्यों में कि भक्त भौतिक कार्यकलाप में कभी कभी दक्ष नहीं होता। जैसे भौतिक बातें हैं बिजनेस या कुछ भी, उसमें वैष्णव दक्ष, लेकिन वैष्णव जन्म मृत्यु छूटने में दक्ष है कर्म बंधन, और ये लोग उसमें दक्ष है। कलयुग में लोगों की बुद्धि ऐसी हो जाएगी, पुत्र उत्पादने दक्षा न दक्षा मुक्ति साधने। नारद जी ने कहा भक्ति महारानी को कि कलयुग के लोग पुत्र उत्पन्न करने में दक्ष होंगे, लेकिन जहां पर जन्म मृत्यु से मुक्ति की बात है अदक्ष, कोई बुद्धि नहीं उनके पास। तो वैष्णव की उसमें बुद्धि होती है, उसमें दक्ष होते हैं कि कैसे कर्म बंधन से छूट जाए और कैसे जन्म मृत्यु से छूट जाए। और वो लोग भौतिक कार्यकलाप में दक्ष होते हैं लेकिन अपने दुख अंतिम दुख निवारण नहीं कर पाते, मृत्यु से नहीं छूट। तो अल्टीमेट दक्ष तो भक्त ही हुए, लेकिन बाह्य रूप से भी आप विचार करिए कि वैष्णव भक्त भौतिक कार्यकलाप में दक्ष नहीं होते, फिर भी भगवान की कृपा से जो भी उसके जीवन में घटित होता है उसको प्रसाद मानकर सहन करते हुए भजन करते, ये वैष्णवता है। वो रोते नहीं रहते और भगवान से भी बार बार भीख नहीं मांगते रहे भक्ति के अलावा, जो भी है जो भी मिलता है उसमें संतोष मानकर अपना भजन करते रहते हैं, ये वैष्णव की पहचान है। लेकिन यहां पर ये जो पांडवों के जीवन में जो भी हुआ वो हमें पता चलता है प्रभुपाद के वाक्यों से कि भगवान की कृपा इच्छा थी, ये तरह होना लीला एक विलास था, उसके द्वारा शिक्षा थी। क्योंकि भगवान कुछ भी इस जगत को धर्म का संदेश देते हैं अपने पार्षदों के माध्यम से ही तो देते हैं। और एक प्रसंग आपको याद दिलाए बलराम जी का दशम स्कंद में, और रुक्मी के यहां गए थे शादी करने कृष्ण के पुत्र की, तो रुक्मी भी उसको निमंत्रण दिया था। रुक्मी कृष्ण का साला जो भगवान ने रुक्मणी हरण में छोड़ दिया था, उसका अपमान करके छोड़ दिया था, उसने भोजगढ़ नगर बनाया। और क्योंकि वचन लेकर गया था कि कृष्ण को मार के आऊंगा नहीं तो वापस कुंडिनपुर में नहीं आऊंगा, तो मार तो पाया नहीं तो वहीं रह गया। और वहां बलराम जी गए तो उनको यही धृत क्रीड़ा के लिए पांसा खेलने के लिए निमंत्रण, बलराम जी बड़े शौक से खेलते थे और उसमें वो चीटिंग करता था, तो बलराम जी से सहा नहीं गया, अपनी एक गदा उठाई और मस्ती का और हरि बोल हो गया, वहीं पर उसकी लीला समाप्त कर दी बलराम जी ने, रुक्मी का वध कर दिया। हम क्योंकि वो हार रहा था फिर भी चिल रहा था मैं जीता हूं, बलराम जी के जीत तो मैं रहा खाली बोले। फिर उसका थोड़ा आनंद शेष है भाई, धरती का भार ऐसे ऐसे कोई सरदर्द करेगा तो खाएगा और क्या। तो उड़ा दिया रुक्मी, तो वहां पर वो भी खेले थे। ऐसे क्षत्रियों के लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये कला है और ये शान भी मानी जाती है, लेकिन कुछ क्षत्रिय इसमें दक्ष होते हैं कुछ नहीं होते, अपना अपना अभ्यास होता है। ये नल सखा यो अश्व विद्याम अनाल मया नलात, ये नल के पास अश्व विद्या थी कि घोड़ों को कैसे चलाया जाए, घोड़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो विद्या किसके पास थी, नल राजा के पास। तो ये ऋतुपर्ण ने नल राजा से अश्व विद्या को सीखा, और ऋतुपर्ण के पास कौन सी विद्या थी, धृत क्रीड़ा की, उसने नल को सिखाया। ये मित्रता में जो गुण होते एक दूसरे को सिखाते हैं ना, नशा करने वाले मित्र को हम देखे सिखाते कि देखो ऐसे पीना चाहिए, वो पहले उसको फूंक लगाना नहीं आता और जान जाए, लेकिन ऐसे सिखाते वो लोग बड़े उदारता से। ये मित्र नहीं है दुश्मन है, लेकिन संज्ञा तो मित्र के ही है। भर्तृहरि ने बड़ा नीति में एक श्लोक लिखा है, मित्र किसको कहते हैं, पापात निवारयति योजयेत हिताय, जो पाप से हमारा निवारण करे और धर्म में लगाए। और कहते हैं कि गुह्यम निगुह्यति, अपनी अतरंग बात भी कहे, और गुणान प्रगटयति, और अपने मित्र के दोष छुपाते हैं और गुण प्रकट करते हैं। और आपत्काले न जहाती, और कहीं मित्र आपत्ति में है तो उसको त्यागते नहीं। सन मित्र लक्षणम संतो वदंती, ऐसे मित्र के लक्षण बताए गए हैं कि पाप से रोकते हैं, धर्म में लगाते हैं, उसके गुणों को प्रकट करते हैं, दुर्गुणों को छुपाते हैं, वो विपत्ति में होती है तो उसे छोड़कर त्याग कर नहीं जाते, उसका साथ देते हैं। और आजकल के मित्र, चल भाई बार में चल, तो ये उनका क्या कर रहे, पाप में लगाते कि छुड़वाते। और कहीं मित्र कहे कि चलो भैया संडे है क्लास में जाना, अरे उधर क्या रखा, उल्टा हो गया, मित्र की परिभाषा आज उल्टी हो गई है। जो शास्त्र कुछ और कहता है, अधर्म में मित्रता हो गई, धर्म में नहीं, ये उसका दुर्भाग्य है। लेकिन मित्रता में भक्ति रसामृत सिंधु में तो मित्र साक्ष्य रस की कितनी बड़ी बड़ी बातें सुंदर बताई है, भक्तों को पढ़ना चाहिए। विश्वासो मित्र वृत्तिश्च सख्य वृत्ति द्विविधम मृतम, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि मित्रता मतलब विश्वास, त्याग, मित्र मतलब पूरा विश्वास रहता है। और उसमें कथा भी बताते एक बड़ी सुंदर, एक वैष्णव, दो मित्र थे और दोनों थके हुए मांदे हुए एक पेड़ के नीचे सोए थे, यात्रा में थे तो, और एक को नींद लग गई, एक जग रहा था, उसी समय उस सर्प के उसमें से एक सांप निकला, और सांप निकल के वाचा शक्ति से कहा कि इसको मैं काटूंगा, इसका खून पीऊंगा, मार दूंगा। वो मित्र ने कहा कि देखो ये मेरा मित्र है, उसको मैं काटने नहीं दूंगा तुम। अरे बोले, उसने पूर्व जन्म में मेरा ये किया था, मुझे बदला लेना है, काल के द्वारा मैं प्रेरित हूं, मैं इनका खून पीऊंगा। वो बोला, वो मेरा मित्र है, मेरे जीते जी मैं उसको पीने नहीं दूंगा, तुम मेरा पी लो। बोले नहीं, मुझे इनका ही चाहिए। बोले तुम्हारा ये जीवा विषैला स्पर्श करेगा वो तो मर जाएगा। तब बोले काम करता हूं, तुमको खून चाहिए ना इसका, मैं काट के इसका खून देता हूं, अलग से पी लो ताकि इसमें जहर नहीं चढ़ेगा। समझ रहे ना अब्बा, सर्प छू ले तो उसका जहर, लेकिन खून काट के अलग दे दिया जाए और तुम उसको पी लो, तुम्हारा प्रतिज्ञा और व्रत और प्रारब्ध पूरा करो। बोले हाँ चलेगा, लेकिन हमको गर्दन का खून चाहिए यहां से। अब क्या करें? बोले गर्दन का दूंगा, चिंता मत करो। और अपने पास छुरी था, उस मित्र का गले, वो मित्र सोया हुआ है, उसने छुरी, अभी छुरी जाग जाएगा कि नहीं, कोई भी होगा तो, कितना हो गहरी नींद में, मंगला में नहीं आएगा, छुरी चलाओ, उठेगा कि नहीं, अलार्म बंद कर सकता है, इसको थोड़ी बंद कर सकता है। फिर वो स्पर्श करा तो थोड़ा सा टांचनी या कुछ सुई, तो चाकू चलाया तो उसको दर्द भी हुआ और जाग भी गया, लेकिन वो देखा कि सोता रहा, क्या करता है, क्योंकि ये मेरा मित्र है, मुझे विश्वास है मेरा भला ही करे। और उसने वो काटा है, फिर भी छोटा स्पर्श, उन्हें खून की बूंदे तो आ ही जाएगी। उसको पत्र एक पत्ते पर लेकर सबको दे दिया, लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद जागने के बाद उसको वहां पर देखता है पट्टी लगाया हुआ है, कुछ मिट्टी डाल के पत्ता चिटका दिया, तो ऐसे छूकर कहता है कि अरे ऐसे देखा हो, कुछ दर्द भी हो रहा, चलो चलने लग गए। वो पूछता है कि तू मेरे को पूछ नहीं रहा है कि तेरे को लगा कैसे। बोले उसमें पूछना क्या है, तुमको पता है क्या हुआ? बोले मुझे सब पता है। मतलब तू नाटक कर रहा था, तू जाग रहा था? बोले हाँ मैं जाग रहा था, ड्रामा कर रहा था। तो तुमको लगा नहीं कि तुम सो रहा है, मैं चुरी चला रहा हूं, तुमको लगा नहीं कि मार देगा? बोले मुझे तुम पर विश्वास है कि तू मेरा मित्र है, स्वप्न में भी मेरा बुरा नहीं भलाई, गला काटते हुए भी मेरा भलाई करेगा, ये मुझे मित्रता की है तो विश्वास है हमको। ये उदाहरण दिया, विश्वास और मैत्री, मित्रता में विश्वास होता है सबसे। आजकल ऐसा मत भ्रम में रहिएगा, ये दृष्टांत जीवन में लागू करें। आज तो मित्र क्या क्या करते पता नहीं, वास्तविक मित्र हो तब ना। इसलिए वास्तविक मित्र हमारे गीता में भगवान कहते सुयदम सर्व, मैं हूं तुम्हारा। विष्णु और वैष्णव ये हमारे हितकर्ता वास्तविक मित्र है, बाकी भोग विषय पाप इंद्रिय तृप्ति में लगाने वाले भले नाम के मित्र हो, लेकिन समझना चाहिए कि आत्मा के नाते हुए हमारे परम शत्रु है। जो भगवान की भक्ति से हमें विमुख करते हैं वो कभी मित्र हो नहीं सकता, जो भक्ति में लगाते हैं। इसलिए गुरु को मित्र कहा गया है जीव का असली, क्योंकि उसे कृष्ण भक्ति देता है। तो मित्रता में जो गुण होते हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान किया जाता है और विश्वास होता है। ये नल राजा से इनकी मित्रता थी, नल के पास अश्वविद्या थी, इनके पास द्रुत रहस्य था, दोनों ने एक दूसरे को सिखाया। अक्षरदयम अर्थात द्रुत क्रीड़ा, तो ये सिखाया। और सर्व काम ततसुतम, और इसी ऋतु पर्ण क्या एक पुत्र था जिसका नाम था सर्व काम। आगे सर्वदाम के कौन से पुत्र होंगे वो सुनाया जाएगा। ये 17वें अध्याय में नल राजा और ऋतुपर्ण की मित्रता, आदान प्रदान, इसके पास ये विद्या, इसने दोनों को एक दूसरे को सिखाया और उसके पुत्र हुए सर्व काम। ये है गंगा महात्मय, विष्णु चरण महात्मय, और ये है सूर्यवंश के राजाओं के पवित्र नाम चरित्र, जिसका श्रवण कीर्तन हमें त्रिगुणात्मक माया से मुक्ति देता है और भगवत प्रीति का वर्धन करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की, रंगराज श्रीमद् भागवतम की, सुरसरी भगीरथी गंगा मैया की, सूर्यवंश की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे वंचाकल्पदुर्भ्यस्य कृपा सिंधुभ्यश्च।